नमस्ते बच्चों, मेरा नाम मानस है और आज हम आपके सामने चैप्टर 10 काठमांडू लेके आए हैं इंग्लिश की क्लास 9 की किताब बी हाइव से। तो इस चैप्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं। बेसिकली एक ट्रैवलॉग कहते हैं ऐसी राइटिंग्स को कि जब कोई बंदा बाहर ट्रैवल करके आता है वो अपनी जो ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस हैं उसको लिखता है, तो उसको ट्रैवलॉग कहते हैं। तो ये उसी तरह का एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें जो इसके ऑथर हैं, जो लेखक हैं, उनका नाम विक्रम सेठ, बहुत ही प्रसिद्ध नॉवलिस्ट हैं और लेखक हैं, दुनिया में सब उनका नाम है। इनकी किताबें बहुत फेमस है, स्पेशली ये किताब है इनकी द सूटेबल बॉय, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इनकी बहुत सारी किताबें हैं और इन्होंने लिखा है। अब इस चैप्टर में बेसिकली अपनी काठमांडू की ट्रिप को डिस्क्राइब करेंगे। जो काठमांडू है वो नेपाल देश की राजधानी है, और विक्रम सेठ जो अपने ट्रैवल में चाइना गए थे, चाइना से इंडिया आ रहे थे, तो तिब्बत होके आए थे, फिर वहां से नेपाल होके आए थे। तो नेपाल में जब काठमांडू में थे तो जो उनके एक्सपीरियंसेस थे उसको उन्होंने इस चैप्टर में लिखा है। तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी किताबें खोल के रखें, मेरे साथ ही पढ़ें, कोशिश करें, देखें कैसे पढ़ा जाता है, और कोई भी उसमें कन्फ्यूजन हो तो हम वहीं क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। आइए देखते हैं। तो बिफोर यू रीड, डू यू लाइक ट्रैवलिंग? The writer Vikram Seth enjoys it very much. In his book, Heaven Lake, he describes a long journey from China to India via Tibet and Nepal. तो ये मतलब आपको सोचने के लिए बोल रहे हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है ट्रैवल करना। इस चैप्टर में जो राइटर हैं विक्रम सेठ, बहुत मजा आता है उनको ट्रैवल करने में। और इस किताब में उन्होंने एक किताब लिखी थी हेवन लेक, उसी से ये वाला चैप्टर उसी से एक्सट्रैक्ट किया गया, उसका एक छोटा सा पोर्शन है। उस किताब में वो अपनी पूरी जर्नी को डिस्क्राइब करते हैं, चाइना से इंडिया कैसे आए तिब्बत और नेपाल होके। Have you heard of places like Ajmer Sharif, Madurai, Sanchi, Varanasi, Sarnath or Halabid? Can you name some other places like these? अभी आपसे पूछ रहे हैं कि आपने सब चीज जगहों का नाम सुना है, अजमेर शरीफ का, मदुरई का, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हेलिबिड। अगर इनका नहीं सुना है तो आप पहले तो पता करिए कहाँ पे हैं ये अपना जल्दी से, और अगर आपको पता है तो कुछ और आप ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस या प्लेसेस जहाँ पे होली प्लेसेस होती हैं, जहाँ पे लोग पूजा वूजा करने जाते हैं, उनकी अगर जगह आपको पता है तो आप क्या उनका नाम बता सकते हैं? What do the surroundings of a holy place in your city look like? Think about it as you read Vikram Seth's description of Kathmandu. कह रहे हैं आपके घर में भी, मतलब आपके जिस शहर में आप रहते हैं वहां पे भी मतलब रिलीजियस प्लेसेस होंगी, जहाँ पे भगवान के मंदिर होंगे या कोई और ऐसी जगह होगी जहाँ पे लोग जाते होंगे पूजा वूजा करने, तो वहां के आसपास का जो सराउंडिंग है उनको आपने देखा है, ये पूछ रहे हैं, और आपको उनसे कंपेयर करना है जो विक्रम सेठ लिख रहे हैं यहाँ पे काठमांडू के बारे में। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। द नेक्स्ट मॉर्निंग विथ मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू आई विजिट द टू टेम्पल्स इन काठमांडू दैट आर मोस्ट सीक्रेट टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट्स। ये कह रहे हैं कि मैंने एक सस्ता सा कमरा लिया सेंटर शहर के बीचों बीच, और अगले दिन सुबह मिस्टर शाह के लड़के और उनके भतीजे या भांजे के साथ जो सबसे फेमस दो टेम्पल हैं काठमांडू के वो मैं देखने गया। एक उसमें से हिंदुओं के लिए बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा सीक्रेट है और मान्यता है, और एक जो है बुद्धिस्ट लोगों के लिए। एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली देयर इज एन एटमोस्फेयर ऑफ फीब्राइल कन्फ्यूजन। कहना पशुपतिनाथ जी का जो मंदिर है उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है कि उसमें केवल हिंदू प्रवेश कर सकते हैं, और वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर ऑफ फीब्राइल कन्फ्यूजन कहने की कोशिश कर रहे हैं। फीब्राइल कन्फ्यूजन का मतलब उनका अर्थ यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, सब इधर उधर चल रहा है और सब ऐसा लगेगा केओस हो रहा है, कुछ ऑर्डरली नहीं है क्योंकि सब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं फीब्राइल कन्फ्यूजन। प्रीस्ट्स, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स। तो उन्होंने कहा कि ऐसी पुजारी और सब रैली वाले जो बेच रहे हैं सामान, जो भक्त गण आए हैं, जो टूरिस्ट हैं, वहाँ पे गाय भी हैं, बंदर भी हैं और कबूतर भी हैं और कुत्ते भी वहाँ घूम रहे हैं, मतलब पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वहाँ आसपास कैसा माहौल है। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, देर आर सो मेनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट्स अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। तो ये कहते हैं कि हमने भगवान पे वो चढ़ाया अपने जो भी ऑफरिंग थी फूलों की, लेकिन वहाँ पे इतने सारे भक्त थे कि कई लोग जो हैं पंडित जी जो वहाँ के महंत जी थे उनका अटेंशन देखने के लिए कि उनको देख लें, तो दूसरों को कोनी मार के किनारे कर दे रहे थे इतनी भीड़। अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, एवरीवन बोज एंड मेक्स वे। पहले जिस जमाने में लिखी गई थी उस जमाने में नेपाल में रॉयल हाउस था, मतलब वहाँ के राजा थे, उनका पूरा परिवार था, तो उस परिवार की बड़ी इज्जत होती वहाँ पे नेपाल में, और वहाँ की कोई प्रिंसेस, वहाँ की कोई राजकुमारी नेपाल उसी दिन मंदिर में अपनी दर्शन करने आई थी, तो सब लोग बड़ी आदर से झुके और उनके लिए जगह बनाई उन्होंने। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सैफ्रन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज, ओनली द हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। और उसके बाद मेन गेट का एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वहां पे कुछ अंग्रेज वेस्टर्नर्स थे, वो मतलब बड़े भगवा कपड़े वपड़े पहन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिसमैन उनको अंदर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि वो हिंदू नहीं समझ रहे थे उनको, क्योंकि हिंदूज ही अलाउड थे उस टेम्पल में। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज, वन चेजेस द अदर हु जंप्स इनटू ऑन टू अ शिवलिंग एंड देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल टेम्पल्स एंड डाउन टू द रिवर द होली बागमती दैट फ्लोज बिलो। तो अब ये कह रहे हैं कि वहां पे एक और सीन था जिसमें कि दो बंदरों में लड़ाई हो गई, वो एक दूसरे को पहले लड़े और फिर एक ने दूसरे को दौड़ा लिया और दूसरा जो भाग रहा था वो दौड़ के कूद के गया और एक शिवलिंग पे लैंड किया और फिर वहां से चिल्लाते हुए भाग गया नीचे सारे टेम्पल्स के आसपास होते हुए। वहां नदी बह रही है बगल में, होली रिवर है, उसका नाम है बागमती, तो उस नदी तक वो भागते हुए चला गया। और फिर वहां पे आपको एक पिक्चर मिलेगी, ये पशुपतिनाथ जी का मंदिर है काठमांडू का, बहुत पुराना एंशियंट और बहुत ज्यादा मान्यता है, नेपाल का सबसे फेमस मंदिर है, लोग दर्शन करने जाते हैं वहां। अ कॉर्प्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक्स, वॉशरवुमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बेथ। अब ये बागमती का आपको जो नदी बह रही है उसका डिस्क्रिप्शन है कि वहां पे एक तो पहले वहां पे हो सकता है कि कोई शमशान घाट होगा जिसमें कि एक पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हो रहा है, तो उसका क्रीमेशन हो रहा है, साथ में एक वॉशरवुमेन मतलब वहां पे अपने कपड़े धो रही हैं कुछ लोग और कुछ बच्चे वहां नहा रहे हैं। फ्रॉम अ बैल्कनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। वो किनारे किनारे जो घर बने हुए उसमें से कोई एक बालकनी में से एक थाली में पूजा की जो पुरानी ऑफरिंग्स हैं उसको नदी में फेंक दिया किसी ने, तो उसमें जो पुराने फ्लावर्स थे वो सूख गए थे, मुरझा गए थे, पहले उन्होंने अपने घर में पूजा की होगी, वही सब उन्होंने नदी में अर्पण कर दिए। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन टू द रिवर बैंक, व्हेन इट इमर्जेस फुली द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप एंड द इविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन अर्थ। तो ये बता रहे हैं कि वहां पर एक छोटा सा मंदिर टाइप का है जो कि ऐसी स्टोन पे है रॉक में कि जो आधी वो निकला हुआ है ऐसे नदी के ऊपर, मतलब किनारे से उसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे की गई है कि वो थोड़ा जैसा लगता है कि वो नदी के ऊपर निकले जा रहा है, वो एक क्लिफ पे बना हुआ है नदी के किनारे। तो ऐसी मान्यता है वहां पे कि जब वो पूरी तरह से बाहर निकल आएगा उस क्लिफ से नदी के ऊपर, तो उसके अंदर जो देवी हैं वो निकल के बाहर आ जाएंगी और जो हमारा अभी कलयुग चल रहा है वो कलयुग खत्म हो जाएगा। तो ये वहाँ की मान्यता लोकल वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो अभी ईवल पीरियड चल रहा है ना, हम कहते हैं कलयुग आ गया, सब यहाँ पे अभी ठीक नहीं है, सब मतलब लोग अच्छे नहीं है, करप्ट हैं, ईवल हैं, वो पीरियड खत्म हो जाएगा जैसे ही वो देवी वहां से निकलेंगी, ये उनका मान्यता है। एट द बौद्धनाथ स्तूपा द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। अब ये दूसरे मंदिर की बात कर रहे हैं, बौद्धनाथ टेम्पल, बौद्धनाथ स्तूप जो है बुद्धिस्ट श्राइन उसकी बात कर रहे हैं। वहां पे कह रहे हैं कि वहां पे ज्यादा लोग नहीं आते तो वहां पे थोड़ी शांति है। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड, स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, मेनी ऑफ दीज आर ओन बाय टिबेटन इमिग्रेंट्स, फेल्ट बैग्स, टिबेटन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हियर। तो वो कह रहे हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ा सा व्हाइट कलर का डोम है, गुंबद जिसे कहते हैं, और उसके चारों तरफ एक गोल रोड है, छोटी दुकानें हैं जो कि बाहर वाले एच पे रोड के हैं, और इसमें ज्यादातर दुकानें जो हैं वो तिब्बत के जो रेफ्यूजीज आए हैं, जो वहां से तिब्बत जब चाइना ने इन्वेड किया था तिब्बत में, तो सारे रेफ्यूजीज इधर भागे थे इंडिया और नेपाल की तरफ, तो जो नेपाल में रहते हैं वो लोग वहां पे दुकानें चला रहे हैं, वहां पे ये सब चीजें बेच रहे हैं, जैसे बैग्स होते हैं टिबेटन, उनके अलग तरीके के प्रिंट्स होते हैं कपड़ों पे, सिल्वर पे ज्वेलरी, मतलब वो सारी चीजें आप वहां पे खरीद सकते हैं जो कि एक्चुअल सिल्वर नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब जंग ज्वेलरी टाइप होता है। देर आर नो क्राउड्स, दिस इज अ हेवन फॉर क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। मतलब वही मैंने जो जैसे बताया कि यहाँ पे कोई लोग ज्यादा उतने लोग हैं नहीं वहां पे, जो आए वहां पे तो वहां ज्यादा क्राउड नहीं है। अगर किसी को बहुत ज्यादा चुप्पी पसंद है या मतलब अगर उनको ज्यादा चुप रहना शांति पसंद है तो ये अच्छी जगह है, बिजी स्ट्रीट से बच के आप यहाँ शांति के लिए आ सकते हैं। काठमांडू इज विविड मशीनरी रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर adorned deities along the narrowest and busiest streets, with fruit sellers, flute sellers, hawkers of postcards, shops selling Western cosmetics, film rolls and chocolate, or copper utensils and Nepalese antiques. काठमांडू के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो बहुत ही मतलब विविध है, बहुत तरह के उसमें रंग हैं, वो काफ़ी धार्मिक है और छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे और उसमें खूब सारे देवी देवताएं हैं जिनको आप फूल चढ़ा सकते हैं और पतली पतली और बिजी बिजी स्ट्रीट्स हैं, गलियाँ हैं, वहाँ पे फल बेचने वाले हैं, बांसुरी बेचने वाले हैं, पोस्ट कार्ड्स बेचने वाले हैं, हॉकर्स कहते हैं उनको, और दुकानें हैं जो कि वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स बेचती हैं, लिपस्टिक विपस्टिक जो होता है सजने संवरने की चीज़ें, फिर फिल्म रोल्स बिकते हैं, समय ज़माने में फिल्म रोल्स चलते थे, अब तो डिजिटल कैमरा आ गया है, मोबाइल में होता है, लेकिन पहले जो रोल्स होते थे कैमरे में लगाने के लिए वो बिकते हैं, चॉकलेट बिकती है, तांबे के बर्तन बिकते हैं, और नेपाल में जो एंटीक चीज़ें होती हैं वो बिकती हैं। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोस, कार हॉर्न्स साउंड, bicycle bells ring, stray cows low questioningly at motorcycles, vendors shout out their wares. अभी कहते हैं म्यूजिक जो कि फिल्मों के गाने हैं वो बज रहे होते हैं रेडियो में जोर जोर से, कार की हॉर्न बजाए जा रहे होते हैं काफ़ी तेजी से, साइकिलों की घंटी बज रही होती है, गाय जैसे इंडिया में देखते होंगे अब गाय घूमती रहती हैं और बैठी रहती हैं और ऐसे देखती हैं मतलब रोड पर बैठ के मोटरसाइकिल वालों को घूरती हैं, और जो वेंडर्स हैं जो वहाँ पे रैली वाले हैं वो सब चिल्लाते हैं अपना जो भी बेच रहे होते हैं सब्जी या जो भी बेच रहे हो उसके लिए वो चिल्ला रहे होते हैं, तो इस तरह का सीन होता है, मतलब आप उसे कंपेयर कर सकते हैं किसी भी इंडियन शहर में जब रिलीजियस जहाँ पे भी गैदरिंग होती है तो ऐसी रहती है। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली बाय अ बार ऑफ मार्जिपैन कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजियर ऑन द पेवमेंट रब विथ सॉल्ट चिली पाउडर एंड लेमन a couple of love story comics and even a Reader's Digest. All this I wash down with Coca-Cola and a nauseating orange drink and feel much the better for it. तो अब ये अपने आप को इंडल्ज कह रहे हैं, मतलब बिना सोचे समझे जो ऑथर हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो भी है उसमें अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं, मतलब कि सब चीज़ों का मज़ा ले रहे हैं। ये एक मिठाई होती है मार्जिपैन करके, उसमें लिखा हुआ है कि वो ग्रेटेड आलमंड, मतलब आलमंड होता है मेरे ख्याल से बादाम होता है जैसे रगड़ के घिस के उसके ऊपर से मिठाई पे डाला जाता है, तो वो मिठाई खरीदी कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड एंड चारकोल ब्रेजियर एक डिश होगी वो खरीदी इन्होंने रोड से, इसके ऊपर वो नमक और मिर्चा लगा के और नींबू लगा के, मेरे ख्याल से भुट्टा की बात करें, भुट्टा जो हम भूंजते हैं ना तो भूंजा हुआ भुट्टा खाया इन्होंने नमक वमक मिर्चा लगा के नींबू लगा के। कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, कॉमिक्स खरीदी उन्होंने ऐसी वहाँ की लोकल लव स्टोरीज की, और रीडर्स डाइजेस्ट भी मिल गई वो भी खरीदी पढ़ने के लिए, और सारी चीज़ खाते खाते इन्होंने कोका कोला भी खरीद लिया और एक ऑरेंज ड्रिंक भी खरीद लिया जो कि इनको बहुत ख़राब लगा, लेकिन फिर भी इन्होंने जब खा लिया तो इन्हें बड़ा अच्छा लगा सारी चीज़ें खा पी गए। नॉजिएटिंग का मतलब होता है सिकनिंग, मतलब जैसे लगे तबीयत ख़राब हो रही है, उल्टी आने वाली है। ब्रेजियर का मतलब होता है ओपन स्टोव, जो भूंजने के लिए होता है हमारे यहाँ, और पर से का मतलब होता है कि बाय इटसेल्फ। आई कंसिडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम इफ आई वर प्रोपेल्ड बाय एंथुजियाज्म फॉर ट्रैवल पर से आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना देन सेल अप द गैंजिस पास्ट बनारस टू अलाहाबाद देन अप द यमुना पास्ट आगरा टू दिल्ली। कह रहे हैं कि अब इसके बारे में जब खाने पीने के बाद इन्होंने सोचा कि अब कैसे वापस जाएं घर, अगर इन्हें बहुत ज़्यादा अभी भी ट्रैवल का एडवेंचर का मन है, एंथुजियाज्म अभी है, तो ये या तो ऐसे कर सकते हैं कि ये बस से जाएं काठमांडू से, बस और ट्रेन लेके पटना पहुँचें बिहार, वहाँ से गंगा जी में नाव से ऊपर जाएं बनारस के बगल से निकलते हुए इलाहाबाद तक पहुँचें, और वहाँ से फिर वो यमुना जी पकड़ के यमुना जी से नाव से होते हुए आगरा और दिल्ली पहुँचें। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होमसिक, टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ ऑगस्ट। Go home, I tell myself, move directly towards home. I enter a Nepal Airlines office and buy a ticket for tomorrow's flight. लेकिन उन्होंने अपने आप से कहा कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे अपने घर की याद आ रही है और अगस्त का लास्ट दिन भी है आज। इन्होंने सोचा कि चलो गो होम, मतलब अपने घर चलो सीधे, और ये सीधे डिसाइड किया कि इन्होंने सीधे घर जाएंगे, तो ये नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस में गए वहाँ से फ्लाइट लेने के लिए, और उन्होंने टिकट खरीद ली अगले दिन की फ्लाइट की सीधे डायरेक्ट। दिल्ली में रहते थे ये। I look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel. In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 bansuris protrude in all directions like the quills of a porcupine. अब ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उन्होंने देखा वहां पे एक बांसुरी वाला खड़ा था कोने में, एक चौराहे था उसके कोने में खड़ा था होटल के पास में. अब उसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था, पोल था उस, और उससे लगी हुई थी 50 से 60 बांसुरियां निकली. मतलब जैसे आपने देखा होगा बांसुरी वाला, जब आप कभी देखे हो गांव में या किसी मतलब मेले में, तो बांसुरी वाले जो खड़े होते हैं तो उनके हाथ में एक पोल होता है उसमें बांसुरियां लगी होती हैं, 50-60 ऐसे निकली हुई होती हैं वहां चारों दिशाओं में. तो उसको ये कंपेयर कर रहे हैं लाइक द क्विल्स ऑफ अ पॉक्यूपाइन, एक स्याही जो एक जानवर होता है ना जो कि अपने पीछे से वो बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, वो बहुत खतरनाक भी होता है वो, अगर आपको दिखे तो दूर रहिएगा. वो अपने क्विल्स ऐसे मारता है जो कि आके गड़ जाते हैं, चोट करते हैं, तो उस तरह के क्विल्स ऑफ अ पॉक्यूपाइन की तरह वो दिख रही थी इनको. दे आर ऑफ बैम्बू, दे आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स. वो बांस की बनी हुई थी सारी बांसुरीज, और अलग अलग तरीके की बांसुरी थी, क्रॉस फ्लूट्स थी और रिकॉर्डर्स थी. From time to time, he stands the pole on the ground, selects a flute and plays for a few minutes. The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawker's cries. तो बता रहे हैं कि वो थोड़ी थोड़ी देर में वो जो पोल है उसको जमीन पे रखते थे, वो जो बेच रहे थे वहां पे बांसुरी, और एक कोई भी अलग अलग तरीके की बांसुरी निकालते थे और उसको बजाते थे. तो जब वो बजाते थे तो उसकी जो साउंड था वो उस जो सारी जो वहाँ के मार्केट की जो नॉइज थी, जो लोग चिल्ला रहे थे और जो बेचने वाले चिल्ला रहे थे और ट्रैफिक की नॉइज की, उसके ऊपर से अलग से सुनाई देती थी. ही प्ले स्लोली मेडिटेटिवली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले. कह रहे हैं वो धीरे धीरे बजाते थे और मेडिटेटिवली बजाते थे, मतलब वो बड़े शांत स्वभाव से बजाते थे. मतलब उनको नहीं था किसी को सुनाना है टाइप का, थॉटफुली मतलब सोच समझ के बहुत फोकस के साथ बजाते थे और कुछ ज्यादा शोशा नहीं करते थे, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले बजा रहे थे. He does not shout out his wares. मतलब वो अपने जो चीज उन्हें बेचनी है उसके लिए जोर जोर से चिल्ला नहीं रहे थे जैसे कि दूसरे लोग चिल्ला रहे थे. Occasionally he makes a sale, but in a curiously off-handed way, as if this were incidental to his enterprise. ये उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे. बीच बीच में वो कभी कभी वो उनकी बांसुरी बिक भी रही थी, लेकिन वो जो बेच रहे थे वो इस तरह से बेच रहे थे जैसे उनको कोई मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसको नहीं था बेचने में. मतलब वो मेन काम उनका था बांसुरी बजाना, वो उसमें इतने लगन से बजा रहे थे कि बाकी सारी चीजें उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि बेचना उनका मेन प्रायोरिटी हो, ऐसा नहीं है, वो अपनी म्यूजिक में लगे हुए थे. समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर. I imagine that this has been the pattern of his life for years. बताएं कभी कभी बीच में बांसुरी जब बजाते रहते थक जाते थे तो रुक जाते थे और बगल में जो फ्रूट या फल बेच रहा था उससे बातें करने लगते थे. तो जो ऑथर है वो इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पे कि शायद इसी तरह से इनकी जिंदगी कई सालों से ऐसे ही चला रहे होंगे अपनी जिंदगी. I find it difficult to tear myself away from the square. Flute music always does this to me. It is at once the most universal and most particular of sounds. तो ऑथर कहते हैं कि मैं अपने आप को वहां से अलग करने की कोशिश कर रहा था उस चौराहे से, लेकिन कर नहीं पा रहा था क्योंकि जो बांसुरी की म्यूजिक है हमेशा इन पे ऐसी असर करती है कि बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे और रुक मतलब एक खिंचाव सा होता है उस बांसुरी की म्यूजिक में ऑथर के लिए. एक साथ ही बहुत ही इनको यूनिवर्सल और बहुत ही पर्टिकुलर आवाज लगती है बांसुरी की, मतलब उसमें एक यूनिवर्सैलिटी है, मतलब कि वो कहीं भी जाए उसका मतलब मीनिंग वही रहता है. There is no culture that does not have its flute. The reed ne, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear or breathy flutes of South America, the high-pitched Chinese flutes, each has its specific fingering and compass. अब ये अलग अलग तरीके की बांसुरियों का नाम इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ किस किस देश में किस किस तरह की बांसुरियां हैं, और सबका अलग अलग अपना एक साउंड होता है, पिच होता है, और हर कल्चर में होती है, मतलब किसी भी सभ्यता में आपको उनकी बांसुरी मिलेगी. तो ये सारे नाम है वहां पर, रीड ने, रिकॉर्डर, जापानीज क्या है शाकुहाची, और डीप बांसुरी हिंदुस्तानी वाली. तो इस तरह से ये सारी बांसुरियों का नाम बता रहे हैं. ईच हैज इट्स ओन फिंगरिंग, मतलब हर तरह का अपना मतलब किस तरह से उसमें उंगलियां चलानी पड़ती हैं बजाने के लिए, वो सबका अलग अलग स्पेसिफिक होता है और सबकी अलग रेंज होती है, जैसे कहते हैं ना वो सुरताल ऊंचा नीचा, वो सबकी अलग होती है. It weaves its own associations. Yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice. कह रहे हैं लेकिन किसी भी बांसुरी को जब हम सुनते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि मतलब एक कॉमनालिटी यूनिवर्सैलिटी की बात करें मतलब जो एक जो अलग अलग देशों में लोगों को जो चीज जोड़ती है वो इस तरह की म्यूजिक है और जो म्यूजिक है इससे ये इतना हिल जाते हैं क्योंकि ये म्यूजिक ऐसी होती है कि ये ह्यूमन वॉइस से सबसे क्लोज अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को मानते हैं या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मानते हैं तो बांसुरी को मानते हैं क्योंकि जैसे ह्यूमन वॉइस जब आदमी बात करता है तो फ्रेजेस होते हैं ना अलग अलग तरीके से बात करता है सेंटेंसेस होते हैं क्या ये उसको इक्वेट कर रहे हैं बांसुरी की धुनों से जो इतनी क्लोज होती है ह्यूमन वॉइस से और आदमी के एक दूसरे से जैसे बात करते हैं उसी तरह ये म्यूजिक के जरिए भी आप बात कर सकते हैं एक दूसरे से ये इनका कहना है और कोई भी समझ जाएगा दुनिया में कहीं भी जाओगे तो कनेक्ट करता है ये लोगों को जिनको एक दूसरे की भाषा नहीं आती होगी लेकिन ये म्यूजिक ऐसी यूनिवर्सल है कि सबको उसी तरह से अफेक्ट करती है He too needs to pause and breathe before it can go on. कह रहा है जैसे कि इंसान को रुक के सांस लेना पड़ता है रुकना पड़ता है बात करते समय उसी तरह से बांसुरी की जो म्यूजिक है उसको भी उसी पैटर्न से प्ले किया जाता है That I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprised me at first. For on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. तो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा मैं अफेक्ट हो गया उस बांसुरी से ये खुद अपने आप से सरप्राइज थे क्योंकि इसके पहले भी जब वो बाहर जाते थे वापस आते थे इतने दिन के बाद घर तो कभी उनको ऐसा नहीं हुआ कि इतने डिटेल में उन्होंने किसी बांसुरी वाले को या किसी भी म्यूजिक को नोटिस किया हो और इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस जो कि जितने अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया है उस म्यूजिक को तो इसके पहले उन्होंने कभी नहीं किया तो इन शब्दों के साथ वो इस चैप्टर को एंड करते हैं जैसे कि मैंने बताया ऑथर का नाम विक्रम सेठ है और उनकी एक बुक है हेवन लेक जिसमें से ये चैप्टर लिया गया है हर बार की तरह आपको मैं वही कहूँगा कि आप जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको अच्छे से करें इससे आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा और साथ में आपकी इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन मतलब इंग्लिश को समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आप बोल के भी प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि बोले बिना कुछ आता नहीं है वर्ड मीनिंग्स कोई भी ऐसा वर्ड ना हो जिसकी मीनिंग आपको ना पता हो आप तुरंत देखें मीनिंग और उसको वहाँ पे लिख लें और सारी एक्टिविटीज करें और लास्ट में जो पोएम है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील तो इसमें भी जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं आप देख लें फिर लास्ट में मैं एक अलग सेशन करूँगा जिसमें सारी पोएम्स के डिक्शन और प्रोनंसिएशन पे मैं बताऊँगा कि कैसे इसको पढ़ना है और कैसे बोलना है दो पोएम्स हैं इसमें तो ठीक है ये करते करते आप आगे बढ़ें मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं ऑल द बेस्ट नमस्ते